नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से जिला समन्वयक दिनकर पातुकर आज हमारे साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मोबाइल वाणी द्वारा पर्यावरण संवाद सप्ताह के अंतर्गत प्रथम दिवस में आमंत्रित है वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी टीकेश गुर्वे जी। नमस्कार गुर्वे जी।
नमस्कार दिनकर जी।
जैसा कि छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संवाद सप्ताह का आयोजन विविध सामाजिक संगठना एवं समाज सेवी के माध्यम से आयोजित किया गया है, जिसमें आप प्रथम दिवस में आमंत्रित सदस्य हो, सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन है।
धन्यवाद।
हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है, तो आपकी नज़र में पर्यावरण की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए?
देखिए दिनकर जी, हमारे यहाँ भारतवर्ष में हम विविध परंपराओं का निर्वहन करते हैं, और इन विविध परंपराओं के तहत हमारे यहाँ हम 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। मैं प्रायः देखा करता हूँ कि हम लोग एक सामान्य सी परिभाषा पर्यावरण दिवस के संदर्भ में बना लेते हैं कि पौधे लगाना, उनके संरक्षण का संकल्प लेना, पेड़ नहीं कटना चाहिए इसका संकल्प लेना, और पौधा लगाना, पेड़ का संरक्षण, पौधे का संरक्षण, पेड़ बनाना, यही हमारी संकल्पनाएं होती है पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन पर्यावरण शब्द का जो अर्थ है वो बड़ा गहरा अर्थ है। पर्यावरण के साथ में हमको पेड़ तो है ही, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, वायु है, जल है, मिट्टी है, नदियाँ, जंगल, जीव, इससे भले हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो एक पर्यावरण का ही हिस्सा है, और पर्यावरण से ही धरती पर जीव संभव है। लेकिन हम इसे भूल जाते हैं, इसकी हम अनदेखी करते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है कि विश्व में हम सूखा देखते हैं, कहीं हम बाढ़ देखते हैं, वर्षा जैसी आपदा का हमें सामना करना पड़ता है, पशु पक्षी समाप्ति के कगार पर है, इनकी प्रजातियां जो है वो समाप्त हो रही है। तो दिनकर जी, हमको बड़ी व्यापक स्तर पर हमको पर्यावरण की जो परिभाषा है वो करने की और वो समझने की आवश्यकता है। मैं आपको एक धरती पर वाइल्ड लाइफ बचाने की अपील करने वाले जो फिल्म डायरेक्टर है अभिषेक रे की बात को मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उनका कहना था कि हमने वाइल्ड लाइफ की आधी आबादी खो दी है, एक और लोग धन संपत्ति कमाने में लगे हैं, लेकिन अपनी आय वाइल्ड लाइफ संरक्षण से खर्च कर, अपने अभिषेक जी जो है अपनी आय जो है वाइल्ड लाइफ संरक्षण पे खर्च कर रहे हैं, और वे कहते हैं, उनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण वाइल्ड लाइफ का ही संरक्षित रखने का सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। दिनकर जी, बड़ी व्यापक परिभाषा है और हमको ये व्यापक परिभाषा को लेकर चलना पड़ेगा। मैं सामान्य रूप से आपसे बात समझाता हूँ। हम लोग विशेष अवसर पर आनंद उत्सव मनाते हैं, और आनंद उत्सव में हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में पटाखे फोड़ने का बड़ा एक चलन है। हमारे घर में बच्चा हो जाए तो हम आतिशबाजी करते हैं, हमारे यहाँ विवाह हो तो हम आतिशबाजी करते हैं, कोई राजनीति में कोई नेता चुनाव जीत जाए तो वो आतिशबाजी करते हैं, दीपावली का त्यौहार आते हैं तो हम आतिशबाजी करते हैं। तो मेरा कहना है कि कम से कम हम आज एक संकल्प तो ले कि कम से कम हम इस विशेष अवसर पर होने वाली आतिशबाजी नहीं करेंगे। हम बाजार में जाते हैं, घर से थैला ले जाने की बजाय हम वहीं दुकानदार से पॉलीथीन मांगते हैं, और बड़े गर्व से हम उससे पॉलीथीन मांगते हैं। तो यही छोटी छोटी जो बातें हैं, ये सारी चीजें पर्यावरण से जुड़ी हुई है, और पर्यावरण का बड़ा एक लंबा और विस्तार और विस्तृत रूप से परिभाषा है। सिर्फ पेड़ लगाने तक और पौधों के संरक्षण करने तक ही पर्यावरण की परिभाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
गुरु जी, जैसा कि आपने पर्यावरण की परिभाषा में एक विस्तृत जानकारी आपने साझा की, और हमने देखने में भी आया है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत से संगठन कार्य कर रहे हैं और विविध दिशा में उनका कार्य रहा है। जैसे जंगल की भी हम बात करें तो जंगल सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, डिंडोरी में हुआ था। इसी प्रकार चिपको आंदोलन भी हमारे देश में देखने को मिला है, और अभी हाल ही में श्रीमती करुणा रघुवंशी भोपाल द्वारा बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन, जहां पन्ना में जैसे हीरे की खदान, वैसे छतरपुर में भी हीरे की खदान निकलने से वहां इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में भी एक समय में जंगल सत्याग्रह आंदोलन चला था और उसे क्या आप पर्यावरण की नजर से कितना उपयोगी मानते हो, क्या उसकी आज आवश्यकता है?
देखिए दिनकर जी, भारत में विविध संगठनाएं हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की संगठनाएं हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगठनाएं हैं। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में पर्यावरण के विषय पर काम करने का हर संगठन का अपना एक अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन हम सार्वजनिक रूप से यदि देखें तो सबका उद्देश्य यही है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें। पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो धरती रहेगी और धरती रहेगी तो हम रहे, सबका उद्देश्य एक है। लेकिन उनके काम करने करने का सबका मोटो अलग अलग होता है और वे अपने पृष्ठभूमि पर अपने उद्देश्यों के आधार पर या उनका जो भी मैनोफेस्टो होगा वो उसके आधार पर समाज में काम करते हैं, देश में काम करते हैं, राष्ट्र में काम करते हैं। दिनकर जी, सबका उद्देश्य एक ही है और मुझे लगता है कि सबकी जो सोच होती है वो यही होती है कि क्यों कर किसी का इंतजार की देर हो जाएगी, क्यों कर किसी का इंतजार की देर हो जाएगी, तू अकेला ही कोशिश कर बात जरूर बन जाएगी। सारी संगठनाएं इसी पृष्ठभूमि पर काम कर रही है, इसी विचार को लेकर काम कर रही है कि हम किसी और की क्या बात करें, हम अपने स्तर पर अपने उद्देश्यों के आधार पर हमारी तय दिशा निर्देश के आधार पर या हमने जो अपने संगठन के उद्देश्य तय किए हैं उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए हम काम करते रहे और इस सारे कामों की सार्थकता है। आपने दिनकर जी एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, एक जंगल सत्याग्रह को लेकर आपने सवाल किया है। दिनकर जी, आजादी के समय में जब हम गुलाम थे उस दौर में जो आजादी का आंदोलन चला था उस दौर में एक जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चलाया था। उसके पीछे की पृष्ठभूमि मात्र अंग्रेजों को इस देश से भगाना ही नहीं था, तो अंग्रेजों ने जंगलों को लेकर जो कानून बनाया था उस कानून से हमारा सर्वसामान्य व्यक्तियों का संबंध जंगलों से टूट गया था, क्योंकि हमारी आजीविका का अधिकांश हिस्सा जंगलों पर निर्भर था और हम अंग्रेज चाहते थे कि हमको जंगलों से दूर किया जाए, इसलिए एक जंगल सत्याग्रह बापू ने चलाया था। उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि थी, लेकिन आज के संदर्भ में हम यदि बात करें तो आज हम भले ही स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम मानसिकता हम गुलामी से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन दिनकर जी, हम उस दौर के आजादी के दौर के जंगल सत्याग्रह की परिभाषा को यदि उस दौर की परिभाषा को हम यदि नए परिपाटी में और नए स्वरूप में हम यदि ढालना चाहेंगे तो आज हम ये कहते हैं कि आज भी हमको जंगल सत्याग्रह चलाना पड़ेगा। आज का जंगल सत्याग्रह हमको किसी अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं तो हमारे ही देश के तथा कथित जो पूंजीवादी लोग है, जो भौतिक विचारधारा के जो लोग है, इन लोगों के खिलाफ में हमको आज भी जंगल सत्याग्रह चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में जिस तरीके से जंगल समाप्त हो रहे हैं, जंगलों का घनत्व कम हो रहा है, इसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं, और यदि जंगल नहीं रहेगा तो ये धरती भी नहीं रहेगी, इसलिए हमको उस दौर के जंगल सत्याग्रह की परिभाषा को बदल कर या नए परिदृश्य में लाकर आज हमको फिर से हमारे ही देश में जो तथाकथित जो लोग हैं जो जंगलों की सफाई में लगे हैं या आधुनिक विकास के नाम पर जंगलों का सफाया कर रहे हैं, विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में हमको फिर से जंगल सत्याग्रह शुरू करने की आवश्यकता है।
गुरुवे जी, जैसे अभी हम जंगलों की बात कर रहे हैं, ठीक यही बात हमें नदियों पर भी देखने को मिलती है। इस देश में गंगा बचाओ आंदोलन चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला और छिंदवाड़ा जिले में तो कन्हान बचाओ भी आंदोलन चला है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे कि इसमें आज वर्तमान समय में इसकी कितनी उपयोगिता है और इसमें जन भागीदारी का क्या महत्व है?
दिनकर जी, अपन थोड़ा पीछे चले, जब हम कबीलाई संस्कृति से कबीलाई संस्कृति में आए तो कबीलाई संस्कृति में आने के दौरान क्या हुआ कि हमने गांव और अपने कबीले वहां बसाए जहां नदियां थी। इसके पीछे का संदर्भ यह था कि नदियों में पानी था और पानी हमारा जीवन है, क्योंकि हमारे बॉडी में 72% पानी है और पानी ही हमारा जीवन है, तो हम नदियों के किनारे बसे हैं। आज भी आप देख लीजिए कि अधिकांश गांव आपको नदी के किनारे बसे मिलेंगे, इसका तात्पर्य यह था कि नदी हमको पीने का पानी उपलब्ध कराएगी जो हमारा जीवन है। कालांतर में क्या हुआ कि हमने जल स्रोत के नए नए आयाम ढूंढ लिए, हमने हमने कुएं ईजाद कर लिए, उसके बाद में हमने ट्यूबवेल ईजाद कर लिए, हमने तालाब बनाना शुरू कर दिए और उससे हमने पानी लेना शुरू किया। धीरे धीरे हम नदियों को भूलते जा रहे हैं। परिणाम सा क्या हो रहा है कि नदियों को हम गंदा करते जा रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि हमारे नदी किनारे जो गांव बसे हैं, मैं प्राय देखता हूं कि हमारे गांव में निकला हुआ कचरा, वो व्यक्ति हो या उस गांव की पंचायत हो या स्थानीय निकाय हो, वो गांव से निकला हुआ कचरा नदियों में ले जाकर या नदी के किनारे डाल रहे हैं। इसका संदर्भ क्या हुआ कि आज हम नदियों को भूल चुके हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, पूजा की संस्कृति में आज भी हम नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन नदियों की पूजा हमने सिर्फ एक पूजा तक उसको सीमित रखा है। नदियों की पूजा क्यों करते हैं वो हम भूल चुके हैं। घर का कचरा नदी में ले जाकर डालेंगे और फिर वहीं नदी की पूजा करने जाएंगे, इस संदर्भ को हमको बदलने की आवश्यकता है। मैं अन्य जगह की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि अन्य जगह बात करने जाऊंगा तो मैं इस देश की सरकार पर ही उंगलियां उठाऊंगा कि एक तरफ हम नदियां बचाओ अभियान चलाते हैं, वहीं नदी किनारे बड़े बड़े जो औद्योगिक कंपनियां हैं उनका पानी इन नदियों में और नालों में हम बहाए जा रहे हैं। ये स्थिति छिंदवाड़ा जिले में भी है, छिंदवाड़ा जिला भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में जीवनदायिनी हम कह सकते हैं कन्हान नदी को, और कन्हान नदी का जिस तरीके से दोहन हो रहा है, कन्हान नदी का जिस तरह से प्राकृतिक स्वरूप बदला जा रहा है, वो आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ा संकट है और पेयजल संकट के रूप में वो बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा होगा। मैं कन्हान चौपाल, रामाकोना में जो स्वयं सेवी संगठन है कन्हान चौपाल है, कन्हान चौपाल के साथ में तर्कशील विचार समिति है, ये आपस में समन्वय बनाकर दोनों संगठन बीते कुछ सालों से कन्हान स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, गांव गांव में कन्हान चौपाल चला रहे हैं और ग्रामीणों को नदियों के महत्व के संदर्भ में जागरूक कर रहे हैं। ये आज की आवश्यकता है और आज के संदर्भ में इस तरह का काम करने की नितांत आवश्यकता है। मुझे कन्हान चौपाल का और तर्कशील संस्था का एक बड़ा उद्देश्य अच्छा ये लगा कि लोगों को आपने श्रद्धा और आस्था के साथ में नदियों को जोड़ा जा रहा है, और उसमें आपने एक मॉडल के रूप में रामाकोना में एक मॉडल बनाया है कि आज भी जो है वहाँ के नागरिक एक वैचारिक परिवर्तन के तहत आपने जो लोगों को जनजागरण किया है उसके तहत आज भी वहाँ रामाकोना में कन्हान नदी किनारे बसे हुए वार्डों के लोग नदियों का जिस तरह से संरक्षण कर रहे हैं, इसी तरह का मॉडल गांव-गांव तक ले जाने की आज आवश्यकता है, और कन्हान चौपाल और तर्कशील संस्था इसके लिए काम कर रही है। इसलिए मैं इन संस्थाओं के सारे सदस्यों को, इनके संचालकों को साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ।
गुरुवी जी, जैसा कि कन्हान चौपाल और तर्कशील संस्थान विगत 4-5 वर्षों से कन्हान नदी को लेकर कार्य कर रही है, तो आप मोबाइल लाने के श्रोताओं को बताने का प्रयास कीजिए कि इस नदी का जीवनदायिनी में दर्जा नहीं था, लेकिन विगत वर्ष शासन द्वारा इसे जीवनदायिनी का दर्जा दिया गया, तो ये कैसे संभव हुआ और इसके पीछे आप किसे श्रेय देना चाहोगे?
दिनकर जी, श्रेय देने का प्रश्न नहीं है। जब हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हम एक निश्चित उद्देश्यों को लेकर, जनहित के उद्देश्यों को लेकर, जन कल्याण के उद्देश्यों को लेकर काम करते हैं, और वाकई में हम जनता के उद्देश्यों को और जन कल्याण को लेकर काम करते हैं, तो श्रेय देने का सवाल नहीं आता। लेकिन सवाल आपका जो सवाल है उसमें ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस नदी को जीवनदायिनी देने का जो दर्जा देने का जो प्रयास हुआ है, उसके लिए निश्चित ही कन्हान चौपाल, तर्कशील संस्था, एकनाथ सृष्टि मेला के उपलक्ष्य में होने वाले कन्हान नदी महोत्सव समिति से जुड़े हुए सदस्य और रामाकोना की विविध संगठनाएं, चौसर क्षेत्र की विविध संगठनाएं, जिन्होंने इन संगठनाओं के पीछे रहकर इन्हें इनका मनोबल बढ़ाया, और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा कि तत्कालीन दौर के जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने भी इस उद्देश्य को प्रशासनिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर सहयोग किया, और फिर अंत में ग्राम पंचायत रामाकोनी की बड़ी भूमिका रही है। इस तत्कालीन दौर में ग्राम पंचायत रामाकोना में जो भी सरपंच, उप सरपंच, जो भी सदस्य रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी रहे हैं, स्टाफ रहा है, इन सारे लोगों ने एकनाथ सृष्टि मेला के बहाने, सही लेकिन कन्हान नदी को जीवंत नदी का दर्जा देने में बड़ा अपना एक योगदान दिया है और ये सारे लोगों का एक सामूहिक प्रयास है और इस सामूहिक प्रयासों की सफलता जीवन में जरूर मिलती है। और इसी ही मिशन में भी यही हुआ है कि सार्वजनिक प्रयासों को सफलता मिली है और भविष्य में भी जो काम चल रहे हैं, वर्तमान में भी जो काम चल रहे हैं, भविष्य में उसको जरूर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मुझे यहाँ लगता है।
गुरुवे जी, तक्षशिल संस्थान और कन्हान चौपाल की पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में आपकी अग्रिम आगे की कार्य योजना क्या है?
देखिए दिनकर जी, तर्कशील संस्था का जो मुख्य जो विषय है, उनका जो मेन मोटो है, मुख्य विषय जो है वो है वैचारिक परिवर्तन। क्योंकि आप विकास की ढेर सारी बातें कर लो, जब तक आपका वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, आप सही विकास की मुख्य धारा पर आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए तर्कशील संस्था का उद्देश्य है वैचारिक परिवर्तन, और इसी वैचारिक परिवर्तन के साथ में कन्हान चौपाल गाँवों में जन जागरण अभियान कर रही है, लोगों को कन्हान नदी में श्रद्धा और आस्था के साथ में लोगों को जोड़ने का काम कन्हान चौपाल कर रही है। गांव-गांव में जनजागरण चल रहा है। पिछले वर्ष कन्हान नदी की परिक्रमा यात्रा भी करवाई थी, क्योंकि इस वर्ष कोरोना के कारण वो यात्रा नहीं हो पाई है। और गांव-गांव तक कन्हान चौपाल द्वारा गांव-गांव तक यात्रा ले जाने का संदर्भ ये था कि हम लोगों का जनजागरण करें, लोगों का वैचारिक परिवर्तन करें, लोगों को नदी का महत्व बताएं, और लोग जिस दिन नदी का महत्व समझने लग जाएंगे उस दिन लोग स्वयं ही नदी का संरक्षण करना शुरू कर देंगे, फिर किसी संगठन या प्रशासन या तथाकथित लोगों की आवश्यकताएं नहीं होगी।
आज आप इस पर्यावरण दिवस पर मोबाइल वाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहोगे?
दिनकर जी, आज के उपलक्ष्य में बस यही संदेश देना चाहूंगा कि मैंने शुरुआत में जो पर्यावरण की जो परिभाषा की है, और उस परिभाषा में पेड़ लगाना ये सब आप छोड़ दीजिए, ये कई कई संगठनें काम कर रही है, बहुत सारे पेड़ लग भी रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपके पास में जो है वो आप क्यों नहीं करते? आप बाजार जाते हैं तो कपड़े का थैला लेके जाइए ना, वहां से प्लास्टिक बस मांगिएगा। आपके यहाँ कोई उत्सव होता है तो आप आतिशबाजी मत करिएगा, आप जीव जंतुओं का संरक्षण करिएगा। विशेष अवसरों पर आप नदियों की पूजा करते हैं तो पूजा करिएगा, लेकिन उसके साथ में नदी के संरक्षण को भी आप महत्व दीजिएगा। और ये काम यदि आप अपने स्तर पर करते हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका लाभ जो है और इसके परिणाम हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हमारे हाथ में जो है, जो हम कर सकते हैं, अक्सर हमारी भावनाएं होती है कि समाज ने करना चाहिए, तो समाज में है कौन? समाज कौन सा समाज? मैं ही तो समाज हूँ, तो पहले शुरुआत मुझसे ही होनी चाहिए। और दिनकर जी, मैं आपको आज गर्व के साथ बता रहा हूँ, मैं पिछले कुछ सालों से सामाजिक कुरीतियों पर काम कर रहा हूँ, लेकिन पर्यावरण पे भी जब मैं काम करता हूँ तो पिछले 6 सालों से मैं प्लास्टिक का इतना विरोध करता हूँ कि मैं किसी भी दुकान में जब जाता हूँ तो प्लास्टिक नहीं ले जाता, अपने घर से थैला लेके जाता हूँ, और मेरी गाड़ी के डिक्के में हमेशा एक कपड़े का थैला रखा रहता है। तो शुरुआत मैं करूँ ना पहले अपने से। मैं ये ना कहूँ कि ये काम समाज करेगा, समाज कौन करेगा? काम तो मुझसे करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज मोबाइल वाणी के माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम किसी पर अपेक्षा करने की बजाय कि पर्यावरण के संदर्भ में सरकार काम करेंगी, समाज काम करेगा, संगठनाएं काम करेंगी, नहीं, पर्यावरण के संदर्भ में आज से हमें संकल्प ना ले कि मुझे काम करना है और मुझे ही काम करना है, और मैं कहाँ कहाँ काम कर सकता हूँ ये मैं तय करूँ और आज एक संकल्प लूं। मैं तो कहता हूं कि आज ही आप एक संकल्प ले लीजिएगा कि चलिए आज से हम पर्यावरण के दिवस के ऊपर में आज से हम प्लास्टिक की उपयोग हम बिल्कुल बंद कर देंगे, कैरी बैग हम नहीं करेंगे, दुकान से नहीं लेंगे, दुकानदार को समझाएंगे। और मैं कहता हूं कि हर आदमी जो दुकान में जाए और दुकानदार को बोले कि यार कैरी बैग नहीं चाहिए, मैं घर से थैला लाया हूं, तो निश्चित है दुकानदार अपने दुकान में प्लास्टिक की बैग रखना बंद कर देगा। लेकिन हो क्या रहा है कि हम दुकानदार को प्लास्टिक की बैग रखना बंद करना बोल रहे हैं और हम खुद जाकर दुकान में प्लास्टिक की बैग मांगते हैं। ये हमको करना पड़ेगा, ये हमको संकल्प आज यहाँ लेना होगा, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आगे मिलेंगे।
गुरु जी, आपसे अंतिम प्रश्न। पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में एक कटु अनुभव मिले है, लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटके हैं और बहुत सी परेशानी के लिए, इस कोरोना काल में आपको क्या सीखने को मिला और वो क्या पर्यावरण से जुड़ा हुआ है?
देखिए दिनकर जी, इसके पहले इस देश में जो जितने भी महामारी आई होगी उसी महामारी का रूप कोरोना भी है, लेकिन कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। और कोरोना तो हमको मुख्य रूप से ये सिखा के गया कि जो प्रकृति के करीब है, जो निसर्ग के करीब है, वही इस दौर में बचा है। प्रकृति के करीब, निसर्ग के करीब, यानी पहला तत्व तो ऑक्सीजन है। और आप देखिए, आप गांवों में देखिए, जो गांव जंगलों में बसे जहां पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध है, वहां कोरोना घुस नहीं पाया। तो कोरोना हमको सिखा के गया कि हमको प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा, पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा, और प्रकृति के जो करीब रहेगा वही आने वाले समय में बचेगा। क्योंकि हमने आधुनिकतावाद के और विकास के नाम पर हमने इस पृथ्वी के पर्यावरण को इतना बिगाड़ चुका है कि उसको जगह पे लाना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आने वाली जो विपदाएं है उनसे यदि बचना है तो हमको प्रकृति से प्रेम करना सीखना होगा। और प्रकृति से प्रेम करना है तो उसका पहला अंग है कि हमको पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। कोरोना हमको बहुत कुछ सिखा गया है, बस ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हमने उन पेड़ों को काटा, जंगलों का घनत्व कम किया है, विकास के नाम पर हमने जंगल सफाया किए, और आज वही व्यक्ति जो आधुनिक विकास की बात करता है वो ऑक्सीजन के लिए, एक एक सिलेंडर के लिए कोरोना के संक्रमण काल में मोहताज रहा है, लाखों करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार था, लेकिन क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे? तो भैया, प्रकृति ने सबसे बड़ा सिलेंडर ऑक्सीजन का दे के रखा है, पेड़ लगाइए, वह पेड़ ज्यादा लगाइए जो ऑक्सीजन अधिक देते हैं। यही एक संदेश है कि कोरोना हमको बहुत कुछ सिखा के गया कि जो प्रकृति से प्रेम करेगा वही आने वाले समय में बचेगा, अन्यथा आधुनिकतावाद और कथित विकासवाद हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जो आपने अपने संपूर्ण साक्षात्कार के दौरान एक बात विशेषकर निकल के आई, जो फ्री है वही कीमती है, चाहे वो प्रकृति से मिलने वाली हवा हो या नदियों से मिलने वाला पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा मोबालवानी आपको पर्यावरण दिवस पर हार्दिक शुभेच्छा देता है, और आपके द्वारा कही गई बातें निश्चित ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी, यही कामना करता है।
धन्यवाद।